تفسير تكتين يا أتوكي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة توبة آیت نمبر بولیے 64 سے تفسیر دیکھیں گے. پچھلے سبق کے آخر میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ ہر سبق کا پچھلے سبق کے ساتھ آپ کا جوڑ لگا ہوتا ہے. کن کی باتیں ہو رہی ہیں؟ آپ ان کو منافق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے لفظ منافق بڑے آرام سے ہم بولتے ہیں؟ کیا جرم تھا ان کا؟ نماز نہیں پڑھتے؟ پڑھتے تو ہیں، چاہے کسالہ سستی کے مارے. کیا حج نہیں کرتے؟ بڑے شوق سے جاتے تھے. تو پھر منافق کون ہے؟ جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہ پیچھے ہو جاتا ہے اپنے معلوم سے. لکھیں، علم کیا ہے جو عمل میں ڈھل جائے؟ منافق کون ہے جس کا علم کاغذوں اور کاپیوں میں لکھا رہ جاتا ہے، اور اول تو وہ بھی نہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ کاپی گم ہی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہنے کا موقع دیا، لیکن تبوک کا سفر کہہ لیجئے کہ ایک ایسا آئینہ بن گیا کہ جس کے بعد پھر یہ چیزیں اب چھپ نہیں سکتی تھیں. کھلے عام منافقین کے نام حالات کھول کر اپنے پیارے نبی کو اللہ نے بتا دیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب دنیا سے جانے کے دن قریب تھے، تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ ایسے اقدامات کیجئے کہ کہیں آپ کے بعد یہ فرقہ اور یہ گروہ امت مسلمہ کو نقصان نہ دے. دوسری بات، آپ کے اصحاب میں سے بھی کچھ کو اس کا علم ہو، تاکہ وہ ان کے ساتھ پھر ویسا ہی معاملہ کریں جیسا کہ یہ کرنے کے حقدار ہیں. تیسری ایک اور وجہ بھی تھی کہ شاید نبی کی زندگی میں ان کا پول کھلنا ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. کہ ہم کتنے بدبخت ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے بعد تو انہوں نے نظر بھی نہیں تھا آنا مسلمانوں کے گروہ میں، یہ صرف سامنے کے چہروں کی باتیں تھیں. تو لہٰذا ایسے تمام لوگوں کی رسوائی کی باتیں ہوئیں، نام لے لے کر بیان کیا گیا، اور اب حال کیا ہو گیا تھا کہ امیجینیشن میں لائیے، مسجد نبوی ہے، سبھی جاتے تھے، شروع سے جاتے تھے، 8-9 سال ہو گئے، 10واں سال شروع ہو رہا ہے. لوگ بڑے اتفاق سے مسجد نبوی میں جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بڑا پیارا تھا، آپ لوگوں کو باڈی لینگویج کے ساتھ یا مذاق میں، تمسخر میں، بے تکلفی میں شرمندہ نہیں کرتے تھے. لوگ بڑے شوق سے جاتے تھے. لیکن اب یہ جن دنوں کے آیات ہم پڑھ رہے ہیں، اس وقت حالات یہ ہو گئے تھے. مثلا آپ دیکھیے آخری 3 آیتیں جو ہم نے پیچھے پڑھی کل، یہ آیتیں جس دن نازل ہوئی ہوں گی مدینہ میں، نبی کے دل پہ مسجد نبوی ہی ہوگی. تصور میں لے آئیے کچھ بھی جگہ، تو وہ لوگ بھی تو بیٹھے ہوں گے نا جن کی باتیں تھیں. آج میرے آپ کے لیے منافق ماضی کا حصہ ہے، اس دور میں منافق قرآن کی تفسیر کا حصہ تھے. کیا دل پہ گزرتی ہوگی یہ؟ بالکل ایسے، میں صرف مثال دینے کو بتا رہی ہوں، نہ مجھے آپ کو کسی کو کسی سے کے بارے میں سوچنے کی دعوت دینا ہے، نہ کچھ. مثلا کل رات شادی ہو اس شہر میں، دھوم مچ جائے، اور جو کچھ خرافات ہوں وہ کہہ لیجئے کہ میڈیا پہ آ جائیں، اور آج قرآن کے دوران اسی کا کوئی تذکرہ کر دے یا کوئی اسی کے متعلق آیت آ جائے. اب آیت آنے اور تذکرے والے کو نہیں پتہ رات کو کیا ہوا شادی میں، لیکن آپ میں سے 4 لوگ اس شادی میں سے ہو کر آئے تو آپ کہیں گے یہ ساری رات کی شادی کی کہانی ہے، حالانکہ جو بولے گا اس نے تو نہیں اٹینڈ کی، لیکن آپ کو پتہ چلے گا. تو اب منافقین کے ذرا دل کے حالات دیکھیے اپنے اوپر لے کر. یہ ایسے ہی کہ کوئی مجرم جرم کر کے بیٹھا ہو اور ایک دم پولیس کا سائرن بجنے لگے، کانپنے لگے، یا سیٹ بیلٹ نہ باندھی اور پیچھے سے پولیس کی گاڑی تھوڑے سے انڈیکیٹر دیتی بھی دکھے. کیا اب ان کو پتہ لگ رہا تھا کہ ہمارے دل کے پول کھلنے والے ہیں؟ تو لہٰذا کیا ہوا؟ آیت 64، یحذر المنافقون، یہ منافق ڈر رہے ہیں. کس بات سے؟ ان تنزل علیہم، یہ کہ کہیں نازل ہو جائے ان پر. ہم سے کیا مراد ہے؟ مسلمان، یہ منافق نہیں ہے. یعنی ان مسلمانوں پر نازل ہو، کیا مطلب مسلمانوں پہ نازل ہوتا تھا؟ نہیں، نازل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ہوتا تھا، لیکن پیش تو ایمان والوں کے سامنے کیا جاتا تھا. کیا نازل ہو جائے؟ سورتن، کوئی ایسی سورت، تو نبیہم، جو خبر دے دے ان کو. کن کو؟ मुसलमानों को किस चीज़ की, बीमा फ़ी कुलूबिहिम, इनकी जो इनके दिलों में है। अब ये जो आखिरी हुम या हिम है ये क्या है, मुनाफिक। बात समझ रहे हैं? देखिए ज़मायर को समझे बगैर आप तफसीर नहीं समझ सकते। देखने में एक ही लफ्ज़ है लेकिन आपके मेरे लिए ये चीज़ तो बहुत आसान है पढ़नी। लेकिन वो लोग जिनके हालात कुरान में पेश किए जाते थे उनके दिलों की हालत ये हो गई थी, दिलों में चोर आ गया, हर वक्त धड़का होता कि कहीं वही के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इनके इस झूठ का पर्दा चाक ना कर दिया जाए। फिर मज़ीद क्या कहा गया, कुल इस्तहज़ियो, चलो मजाक उड़ाओ। आयत के पिछले हिस्से को मत सोचिए इस वक्त, ना अगले को समझिए। क्या है कुल, कह दीजिए, इस्तहज़ियो, मजाक उड़ाओ। क्या है अमर, फेले अमर क्या होता है, हुक्म है। तो कुरान पाक का सिर्फ इतना सा हिस्सा कोई बयान कर दे और कहे कि देखो कुरान कहता है मजाक उड़ाया करो, तो क्या बात गलत होगी? बात तो ठीक होगी। आप परेशान हो जाएंगे, ओहो हम तो कहते हैं किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, तो ये तो कुछ और हो गया। तो लिखिए जब भी कोई, चाहे कुरान ही क्यों नहीं कोट कर रहा, अगर वो कोई बात करे तो उसका टेक्स्ट देखिए, क्योंकि ये अधूरी बात होगी। ये तो ऐसी है जैसे कोई के कत्ल करो, नहीं किसी को कत्ल नहीं करो, तो सिर्फ कत्ल करो पर रुक के कह देखो कुरान कह रहा है कि कत्ल करो, तो गोया के यहाँ क्या बात कही गई, उनको एक और ज़रा डांटने का अंदाज़ है, मजाक उड़ाओ। क्योंकि इन अल्लाह मुखरिजु मा तहज़रून, अल्लाह जाहिर करके रहेगा जिससे तुम डर रहे हो, यानी तुम्हारे अब पोल खुलने वाले हैं, बात तो वैसे भी नहीं छुपती, तुम कितना भी छुपा लो लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें पकड़ कर रहेगा। किसका मजाक करते थे, क्या करते थे, ये आगे बात आएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ज़रा आप इनसे पूछें तो सही, आयत 65 इसी के साथ है, वला इंसअलतहुम, और अगर आप इनसे सवाल करें, लयकूलुन्ना, तो अलबत्ता ये कहेंगे, इन्नमा बेशक, या सिवाय इसके नहीं, कुन्ना थे हम, नखूदु व नलअब, बातचीत और दिल लगी कर रहे। यानी अल्लाह ताला के नबी से फरमाया जा रहा है कि ये मुनाफिकीन जो आए दिन आपके ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ गलत बातें बोलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और अगर आप इनको बुलवा कर उनकी किसी बात का हवाला देंगे तो क्या कह देंगे, अरे वो तो हम जोक कर रहे थे, वी वर जोकिंग, हम संजीदा थोड़ी थे, हंसी मजाक कर रहे थे, दिल लगी थी, सफ़र लंबा था तो बस वक्त गुजार रहे थे, काट रहे थे, हम तो बस ऐसे ही करते थे। तो इसका जवाब इनको क्या दीजिए, कुल, कह दीजिए, अबिल्लाहि, क्या अल्लाह के साथ, व आयाति ही, और उसकी आयतों के साथ, व रसूल ही, और उसके रसूल के साथ, कुन तुम तस्तहज़ियून, तुम थे इस्तेहज़ा करते, मजाक करते, यानी क्या अब तुम्हें यही रह गया, अल्लाह उसका रसूल अल्लाह का दीन ही मजाक वाला रह गया। ला तातज़िरु, हरगिज बहाने ना बनाओ, उज़र ना तराशो, कद कफर तुम बाद ईमानिकुम, तुम कुफर कर चुके हो अपने ईमान के बाद, यानी अल्लाह उसके रसूल और ईमान वालों का मजाक उड़ाना गोया के कुफर में जाना है, और अब तुम कुफर में जा चुके हो। इन नाफ़न ताइफ़तिम मिनकुम, अगर हम तुम्हारी एक जमात से दरगुजर कर भी लें, यानी किसी वक्त तुम लोग बैठ कर जो बातें कर रहे हो उससे दरगुजर कर ही लें, लेकिन याद रखो, नुआज़िब ताइफ़तम बिअन्नहुम कानु मुजरिमीन, लेकिन हम किसी दूसरी जमात को, गिरोह को अजाब देंगे, यानी किसी वक्त हमें गुस्सा आ गया, किसी वक्त ज़रा बर्दाश्त भी किया, लेकिन किसी वक्त तुम पकड़े जाओगे, वजह बिअन्नहुम कानु मुजरिमीन, इसलिए कि ये मुजरिम लोग हैं। इशारा था कि अब वो वक्त आ रहा है कि तुम्हें तुम्हारे करतूतों की सज़ाएं मिलेंगी। अगर आप इन आयतों में देखें तो धमकी है, डांट है, और इसको पढ़ने से ही महसूस हो रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। कुछ बातें ऐसी हैं, आप कह लीजिए इस टॉपिक, ये जो तीन आयतें हमने पढ़ी है ना, अपने करतूतों से खौफज़दा। हमारे यहाँ इसके लिए एक बड़ा खूबसूरत मुहावरा बोलते हैं उर्दू में, चोर की दाढ़ी में तिनका। एक और बोलते हैं, सांप का डसा रस्सी से भी डरे। याद रखिए कि मुनाफिकीन अल्लाह के रसूल की रिसालत पर यकसू नहीं थे, दे वर नॉट फोकस्ड पीपल, इनको यकीन नहीं आता था कि वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं। और याद रखिए, जब रसूल पर यकीन नहीं तो उसकी बात पर भी यकीन नहीं। आज भी जिस इंसान पर आपको यकीन नहीं, उसकी इज्जत नहीं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं, आपको उसके इल्म पर यकीन नहीं, भरोसा नहीं, आप कभी उसके लिए संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेंगे। तो अब होता क्या कि जब दिल जो अंदर से मुड़ा तुड़ा था और एहसास ये भी था कि अल्लाह के नबी को कुछ बातें वही के ज़रिए बता दी जाती हैं और आपके सिवा किसी और को ये पता नहीं होती, अब होता क्या अपनी निजी महफिलों में। अब यहाँ बहुत ही अहम बात है, ख़ास तौर पे कुरान से जुड़े हुए लोगों के लिए, अंसारुल्लाह, जिसमें मैं खुद भी हूँ, हम सब अंसारुल्लाह का दावा करते हैं। अभी ईमान पूरी तरह अंदर नहीं रचा बसाता, ईमान का वो रंग जो गुफ्तगू में दिखना चाहिए, जो किरदार में, गुफ्तार में, जोक्स में, मजाक में दिखना चाहिए, वो नहीं था। अल्लाह के नबी के सामने आते तो बड़े सूटेड बूटेड, सल्यूटेड, जी यस सर, ओके, ऐसे लगे इनके मुंह में ज़ुबान ही नहीं है। बट जब अपनी निजी मजलिसों में होते तो हंसी, मजाक, तमस्खर और ऐसी बेकार किस्म की, कह लीजिए कि वो स्लैंग लैंग्वेज इख्तियार करते कि कोई यकीन ना करता कि ये नबी की महफिल में उठे हुए लोग हैं। ये वहाँ बैठते हैं अकेले में, खूब मजाक करते, हंसियाँ करते, शादियों में कह लीजिए, दावतों में, बाहर, और आज के दौर में ग्रुप्स में फजूल जोक्स भेजते, फजूल बातें भेजते, और अगर वो कोई दूसरा देख ले तो माने ही ना कि ये किसी कुरान वाले का ये मिजाज हो सकता है कि वो इतना थर्ड क्लास किस्म का जोक किसी को फॉरवर्ड करे। लेकिन करते थे, अब कर तो देते, अब डर क्या होता, वहाँ डर क्या था, वही का कि कर तो आते हैं मजाक, आदत जो पड़ी हुई है, हड्डियों में पड़ी हुई है चीज़ तो पड़ती है। तो फिर जब नबी की महफिल में आते ना तो हर वक्त हड़का लगा रहता, अल्लाह अपने नबी को इस बात की इत्तला ना दे दे, और साथ ही उनको अपने ही साथियों में कुछ भी शक भी होता था ये ज़रूर बता देंगे, इनको इनको देखना, इन्होंने बता देना। अच्छा अब क्या होता, दूसरे साथियों को कैसे अपने दिल की इस कैफियत के साथ चलाते कि मुसलमानों को मुतमईन करते कि देखो असल में जो हम आपस में बातें करते हैं ना वो फिर अब खुश भी तो होना ही होता है ना, ज़िंदगी इतनी खुश थोड़ी है, ये है वो है, और अगर देखो कभी नबी सल्लम ने कुछ पूछ लिया ना तो बस चुप कर जाना, मुकर जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब वो बेचारे साथियों ने तो क्या बताना था नबी को, अल्लाह बता रहा है कि देखो ऐ नबी तुम इन लोगों की असल देख लो कि ये अपनी निजी महफिलों में मजाक करते हैं, फिक्रेबाजियाँ करते हैं, अब आप तो दरगुजर करेंगे लेकिन अल्लाह ज़ाहिर कर देगा। और अल्लाह ने अपने नबी को मुनाफिकों के नाम बताए, इल्हाम के ज़रिए से अलामतें बताईं, कुरान भरा पड़े मुनाफिकों की अलामतों से, और इस सूरत में तो इनकी निशानियां भी खोल के रख दी। याद रखिए कुफार और मुशरिकीन के बारे में ये सूरत कह लीजिए कि बहस का ख़ात्मा है, जिसको कहना जी जाते जाते चंद लफ्ज़ बोल के जाऊंगी, ये लफ्ज़ हैं। जैसे किसी को बड़े गुस्सा ग्राज और बड़ा सब्र करे ना तो अखीर एक दिन जब पता होता है ना रिश्ता टूट रहा है, मतलब मियाँ बीवी हैं, झगड़ते ही रहे, लड़ते ही रहे, अब पता चल के तलाक होनी है तो फिर बीवी भी कहती है आज फिर मैं खूब दिल की भड़ास निकाल के जाऊंगी, और शौहर भी कहता है जो नहीं सुनाई थी सुनाऊँ क्योंकि अब तू इसके बाद मेरी सुनेगी भी नहीं। ये मिसाल सिर्फ दे रही हूँ, ज़रा सा सोचिए इतनी ख़तरनाक आयतें, और इसमें ख़ास तौर पर यह बात कद कफर तुम बाद ईमानी को। बस तो इंसान अपनी ज़ुबान से एक कलमा निकालता है केयरलेसली और वो उसको जन्नतियों में से निकाल कर जहन्नमी बना देता है, और इसका अपोजिट भी होता है। यहाँ जो लफ्ज़ है ना नखूद खौत थे, असल मानी क्या होता है, दरिया में उतरना, ये जो हम कहते हैं ना खौस बनाया है वो भी यही होता है, पानी का उतरना, पानी में घुस जाना। अब जब गुफ्तगू के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो आप ज़रा इसका अपना पंजाबी जिक्र भी सुन लें, लेकिन उर्दू में क्या बात से बात निकालते जाना, बात का बतंगड़ बना देना, और हम अपनी ज़बान में क्या कहते हैं बस फिर बातों में खो गए, फिर तो बस गूढ़ियाँ ही पड़ गई, फिर तो हमें समझ ही नहीं रही, हमें याद ही नहीं आया कि कोई और भी हमें देख रहा है। मैं अक्सर ऐसे साथियों को देखती हूँ कभी भी जहाँ मौका आता है पब्लिकली, बाहर दूसरे भी लोग बैठे हुए हैं उनके सामने शुरू हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं है वो लोग इनको देख रहे हैं, शुक्र है आने वालों को भी नहीं पता चलता। लेकिन याद रखिए अगर कोई इबरत की निगाह से देखे तो उन बातों को देख कर परेशान हो जाए, मुनाफिकीन बातों के धनी होते हैं। इससे क्या पता चलता है कि अपनी निजी महफिलों में अल्लाह और उसके नबी को डिस्कस करते थे, ये भी एक जुमला नोट करें, ऐसे लोग मुंह पे कुछ नहीं कहते लेकिन तन्हाई में चाहे किसी एक के साथ बैठकर दुख सुख के नाम पे, या दो चार के साथ बैठकर मीटिंग के नाम पे, और बहुत सारों के साथ बैठकर पार्टी और दावत के नाम पर वो मौजू सुखन बनाते थे, किसको, ऑफ कोर्स अल्लाह की ज़ात को, دین کو، نبی کو اور قرآن کو، شریعت کو، اور اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ جب کوئی نیا حکم نازل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوگوں میں پیش کرتے، تو یہ گھر میں بیٹھ کر اکیلے میں پھر اس پہ بحثیں کرتے، لو اب سود حرام کر دیا، لو جی دیکھو اب زنا نہیں، لو شراب نہیں۔ یعنی صرف سمجھنے کے لیے بات سمجھیے، کوئی نہ کوئی کسی پہلو سے دین کا مذاق اڑاتے، اللہ کا، نبی کا، رسول کا۔ اب بات کبھی نہیں چھپی، یہ لکھ لیجئے، ہمارے والد یہ کہا کرتے تھے، یہ مت سوچو کہ بات کر دی اور اب کسی کو کہہ دیا آگے نہ کرنا تو وہ نہ کرے، بات سر چڑھ کے بولتی ہے، تو منہ سے نکال لو وہ تمہیں گھر سے نکالے گی۔ یہ سب سے بیوقوفی کی بات ہے کہ میں نے تم سے کر دی، تم کسی سے نہ کرنا۔ اور لوگ تو پتہ نہیں کس کس سے کرتے ہیں، اور ان سے بھی کرتے ہوں گے جن سے کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ کیجول باتیں گھر والوں کو پہنچ جاتی ہیں، بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بھئی آپ کو کس نے بتائی یہ بات، آپ کا کہاں واسطہ پڑا اس بندے سے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ زبان انسان کی زندگی میں بڑی اہم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں سب کو کہہ رہا ہے زپ دا ماؤتھ، زبان بند کر لو، کم بولو۔ جتنا کوئی کم بولے گا اتنی مسخریاں کم کرے گا، جوکس کم کرے گا، موضوع کم کرائے گا، اور آپ دیکھیے کہ وہ تو کل کی باتیں تھیں، ان کو تو چھوڑیں، اور ان کے ساتھ تو جو ہوا، ٹولیوں میں بیٹھے جب یہ سارا تبوک کے رستے کی باتیں، رستوں میں جا رہے تھے نا تو کہتے تھے جیتنا تو کوئی نہیں ہے، ہم ان کے نام پہ چال تو پڑے ہیں۔ اب جب دل نہ ہو، ساتھ نہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ مسئلے بڑے بنتے، تو اب وہاں بیٹھ کے پھر باتیں کرتے، ادھر بیٹھتے، کوئی کہتا یہ جا تو رہے ہیں واپس آنا کوئی نہیں، کوئی کہتا مٹھی بھر کھجوروں کے ساتھ یہ روم کو فتح کرنے جا رہے ہیں، اور بعض کچھ سوچتے وہ صرف خاموش تماشا ہی بن کر ان کی باتیں سنتے سناتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کا یہاں پول کھول کر یہ بتا دیا کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ یہاں آپ کے میرے عمل کی بھی چند باتیں۔ پہلی بات ہے، ہمیشہ اللہ کو اپنے سر پہ دیکھیں، وہ ان اللہ مخرجم ما تحذرون۔ اللہ میرے دل کی بات کھول دے تو کیا میں سن سکتی ہوں؟ کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا غلطی سے آپ کوئی پوسٹ دوسرے گروپ میں ڈال دیتے ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا غلطی سے کوئی وائس میسیج ہوتا کسی کا، بے تکلفیق ہے، اور آپ بڑے کسی ڈیسنٹ گروپ میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں، پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا کسی کے ساتھ، ایک موقع پہ انہوں نے شیئر کیا، میری آگے بھی عادت اللہ کے حکم سے غلطیاں مجھ سے بھی بہت ہو جاتی ہیں، لیکن میں نے جب بھی کسی گروپ میں کوئی میسیج چھوڑنا، پہلے میں اوپر جا کے لسٹ کھول کے پڑھتی ہوں کہ میں ٹھیک جگہ بھیج رہی ہوں، کیونکہ میرے پاس تو 200-500 گروپ ہیں، تو میں غلط میں ڈال دوں گی تو بعد میں شرمندہ ہوں گی۔ کوئی کسی کا معاملہ چل رہا تھا، یعنی یہ سچا واقعہ اور عبرت کے لیے بتا رہی ہیں آپ کو، بالکل رشتہ ہونے کے قریب تھا، اچھا لڑکا تھا، اچھی لڑکی تھی، مرد اچھا تھا، اچھی عورت تھی، دونوں میں دین تھا، جو بھی کہہ لیجئے۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ بالکل فائنل ڈیسیژن کے لیے اس لڑکے نے کچھ، یعنی اس کی طرف سے جو میسیجز ہمارے ان کے گھر میں آئے، تو اس میں ان کے دل میں کچھ ڈاؤٹ تھا کہ میں ذرا چیک کروا لوں کہ اس طرح کے لڑکے سے مجھے شادی کرنی چاہیے۔ اس نے وہ میسیج اپنے حساب سے کسی اور کو فارورڈ کرنے تھے، نہیں سمجھے کہ بھائی ذرا ان سے مشورہ کر لیں۔ اتفاق دیکھیے، اس نے پھر اسی لڑکے کو میسیج، یعنی ان کے گھر والوں کی طرف جدھر بھی تھا، وہ میسیج اسی کو واپس چلے گئے، اور اس میں نیچے اس کا میسیج بھی تھا کہ ذرا آپ اس کی تحقیق کر دیں، یہ ہے وہ ہے۔ اس بات پہ وہ رشتہ ٹوٹ گیا، ہوتا ہوا بلکہ ہوا ہوا ٹوٹ گیا کہ آپ کو ہم نے اپنی اگر کوئی پرسنل باتیں بتائی ہیں تو آپ کسی تیسرے کو بتا کے ہمارے بارے میں رائے لے رہے تھے۔ عقل استعمال کریں۔ اور اس میں ایک بہت بڑی بات یاد رکھیں، ایک تو لاپرواہی ہے، فرسٹ تھنگ، یہ لاپرواہی بھی بہت رسوا کرتی ہے۔ لاپرواہی میں جو میں اور آپ باتیں کرتے ہیں نا، وہ ہمیں شرمندہ کراتی ہیں، یاد رکھیں۔ اپنی زندگی سے لاپرواہی نکال دیجئے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک اور چیز، اس سے بھی بڑھ کر جذباتیت، بینگ ایموشنل، ایموشنلزم۔ جذباتی بندہ ہر وقت خطرے میں ہوتا ہے، وہ صرف 3-4 منٹ کے ایکٹ سے اپنے اندر کا حال کھول دیتا ہے، چاہے بعد میں وہ شرمندہ ہوتا پھرے۔ کسی بات کو سن کے ایک دم ہائپر ہونا، اوور ریئیکٹ کرنا، رونے لگ جانا، کانپنے لگ جانا، بعد میں خود اگر وہ اپنی بات سنے تو شرمندہ، میں کیا کہہ رہا تھا، میں کیسے بول رہا تھا، میں کیسے سن رہا تھا۔ تو ایک لاپرواہی اور دوسرا جذباتی پن بندے کو دوسروں کے سامنے شرمندہ کر دیتا ہے۔ آپ ایسی برف کی سل بن کے کسی کے سامنے بیٹھے ہیں، سارا دن اپنی جگہ بیٹھے رہے ہیں، کسی کو مت بتائیں میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں۔ اور آپ دیکھیں، یہ تو اللہ اور اس کے نبی کی محفلیں ہیں نا، آپ اپنے بچوں کے اوپر لیں، آپ کو غصہ آتا ہے؟ اگر آپ وہ صرف 10 سیکنڈ برداشت کر لیں جو آپ کو اپنے بچے کی غلطی دیکھ کر غصہ آیا، صرف 10 سیکنڈ، यकीन करें यू विल बी अ वेरी नाइस मॉम। बच्चा कहेगा कि मामा मेरी इतनी बड़ी बात पे आपने जिस तरह सब्र किया, यू आर माई हीरो, यू आर माई आइडियल। बट हम उस वक़्त एक चांटा नहीं मार सकते यहाँ, यहाँ तो मार ही नहीं सकते चांटा, पर वो जो मुंह से दो चार जुमले बोल देते हैं, फिर बाद में चाहे उसको कि चलो आ जाओ मेरा बच्चा, लेकिन उसके दिल से आपका एक लेवल नीचे हो गया कि माँ ने इस वक्त क्या कह दिया। हर जगह हर लेवल पे आप कोई लीडर हैं, आप कोई बड़े हैं, कोई आपको अल्लाह ने काम दिया है, थोड़ी सी बर्दाश्त तब बोलें जब आप अगला सुने और उसको फ़ायदा हो। और ये हौसला और ये सब्र अल्लाह के नबी से ज़्यादा किसी में नहीं था। आखिर 9 साल आपको भी पता था। देखिए आम बंदों को नहीं पता चल जाता कौन प्यार से बोल रहा है, कौन मुनाफ़क़त से बोल रहा है, कौन चापलूसी कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। हम तो वैसे ही बड़े फतवे देते रहते हैं, कौन ऊपर से कर रहा है तो कौन अंदर से कर रहा है, तो मुझे तो उसकी तो पता, मुझे उसकी पता। अल्लाह के नबी को नहीं पता चलता होगा, लेकिन आपका सब्र था, अल्लाह ने वो बातें खोल दी। तो लिहाजा ये वो जो चीज़ें हैं वो इंसान के लिए। और इस आयत पे लिख लीजिए, मैंने आपको सूरत के शुरू में बताया था कि इस सूरत का एक नाम अल-फातिहा, अलिफ लाम फा अलिफ दुआद और बड़ी हा और छोटी हा, रुस्वा करने वाली है। इस सूरत में मुनाफिकों के भेद खोले गए। नाम नहीं लिए क्योंकि अल्लाह सत्तारुल अयूब है, पर्दापोशी करता है, मजम्मत करता है, और क़्यामत तक के आने वाले मुनाफिकों को महसूस हो कि ये हमारी बातें हो रही हैं। अब सवाल पैदा होता है कि मुनाफिकों के दिल के भेद थे क्या जो अल्लाह खोल रहा था? तो नंबर एक बुगस, एनिमिटी थी अल्लाह उसके नबी और उसके दीन से, सबसे दुश्मनी थी। दूसरी बात है, मुनाफिकीन अल्लाह के नबी और सहाबा के अमल को कम समझते थे, मजाक उड़ाते थे। मजाक कैसे? किसी ने कहा ये कुरान पढ़ने वाले हमें तो इसके सिवा कुछ नज़र नहीं आते, ये हमें सबसे ज़्यादा भूखे हैं, ये हमें सबसे ज़्यादा झूठे हैं, इनके तो पेट ही बड़े हैं, मौलवी के नाम पर लतीफ़े, इस तरह के लतीफ़े, और हलवा कैसे बदनाम है, और दो मौलवियों के बीच में मुर्गी कैसे बदनाम है, यही थे उनके भी मजाक। कहते थे ये तो बड़े बुजदिल हैं, अरे ये रूमियों से लड़ना लो जैसे अरबों से लड़ते थे और जीत आते थे, इनका ख्याल है अब इसमें भी चल पड़ेंगे, देखना कल रस्सियों में बंधे हुए आएंगे। ये तारीख ने इनके जुमले नोट किए, हमें आप पढ़ें तफसीर इब्ने कसीर में इनके डिटेल से जुमले लिखे हैं। कहते थे देखना ये आज बड़े तपाक से तबुक की तरफ गए, कल रस्सियों में बंधे आएंगे। और किसी ने कहा अरे हम समझते हैं ये रूम के महल और किले पता करने जा रहे हैं, ये देखना ये क्या करेंगे। और कोई कहने लगा अब जा रहे हैं, देख लो आखिरी बार, कोई नहीं वापस आएंगे। दिलों में ये बातें लेके बैठे थे, दिल के भेद और ज़ुबान की बदगोइयाँ अल्लाह ने खोल के रख दी। और याद रखिए ये हर जंग में हुआ। सूरत अहज़ाब में हम पढ़ेंगे ग़ज़वे अहज़ाब के किस्से आए 60 और 61 के ला इल्लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन। अल्लाह फरमाते हैं यकीनन अगर मुनाफिकीन और वो जिनके दिलों में बीमारी है और मदीना में अफवाहें फैलाने वाले बास ना आए, तो हम लाजिमन आपको इन पर मुसल्लत कर देंगे और फिर वो इस शहर में आपके साथ बहुत कम रहेंगे, लानत किए होंगे, जहाँ कहीं पकड़े जाएंगे पाए जाएंगे और टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, बुरी तरह टुकड़े किए जाना। तो क्या पता चला कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है। फिर इसके बाद आप देखिए आज के दौर में क्या है। आज हम मुसलमान तो जो कर ही रहे हैं सो करें, गैर मुस्लिमों को भी देखिए, नबियों का मजाक उड़ाना आज का फ़न है। बड़े बड़े ऐसे दलाइल मौजूद हैं, आप जाके देखिए नबियों का मजाक, जो कार्टून्स बनते हैं हज़रत मूसा का मजाक, उनको कभी फ़्रॉक पहनाए दिखाया जाता है, कभी उनको बिकिनीस पहनाए हुए दिखाया जाता है। इसी तरह एक इंग्लिश फिल्म है जिसमें उन्होंने, जैसे आप जालूत और हज़रत दाऊद का किस्सा पढ़ चुके हैं ना, तो उन्होंने दो किरदार दिखाए हैं, गोलियत और साथ डेविड। और आपको पता है कि वो एक तो आदमी और डेविड किसको बनाया? कुत्ते को बनाया हुआ। मजाक उड़ाते हैं। हज़रत सुलेमान का जो मजाक है, ज़रा सा आप लिखिए हौद में एक फ़न ऑफ द प्रॉफिट, लंबी लिस्टें आपके सामने खुल जाएंगी। बादब बा नसीब, बेअदब बे नसीब। बेअदब को कभी भी इल्म मिल जाए, इल्म पे अमल की तौफीक नहीं मिलती। तो हंसी बोलना मजाक करना कराना ये चीज़ें एक ख़ास हद तक रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और एक छोटी सी बात जो बहुत सारे दीनदार भी कर जाते हैं, दीन के रिचुअल का मजाक, चार बीवियों का मजाक, हूरों का मजाक, मुजाहिदीन का मजाक, दाढ़ियों का मजाक, टखनों से ऊंची शलवारों का मजाक, पर्दा निंजा टर्टल बन गया और निकाबी और हिजाबी और फलानी फिलानी, तौबा कीजिए। कोई कितना भी बेअमल है, आप उसके जाहिर के ऊपर कभी उसका मजाक ना करें कि ऊपर से तो ये दिखते हैं, अंदर से वो दिखते हैं। अब आप देखिए कि ये जो बात करके अल्लाह ताला ने आपके मेरे लिए एक क्राइटेरियन रखा अपने अंदर झांकने का, आज से अपने दिल को इस बात पर यकीन में डालें, बच्चे कभी मजाक नहीं उड़ाना। हमारे कल्चर में किसी का अजारबंद खुला तो मजाक, चलते चलते को गिर गया, पहले लोग उठाते थे और हंसते थे, अब तस्वीर बना रहे होते हैं कि पहले तस्वीर बना के भेज दें फिर इसको उठाएंगे, अगर बच गया तो ठीक कर लेंगे। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि याद रखिए कि ये वो लोग हैं जो ऐसे मजाक करते हैं। इसका एक वाक्या भी सुनिए, क़द कफर तुम बाद ईमानिकुम के साथ तफसीर में आता है, इब्ने अबी हातिम की रिवायत है इब्ने उमर से। कहते हैं कि ग़ज़वे तबूक में एक शख्स ने एक दिन एक मजलिस में कहा कि मैंने इन मेहमानों जैसा और ना इनसे ज़्यादा ख्वाहिश वाला और ना इनसे ज़्यादा झूठा और ना इनसे ज़्यादा दुश्मन के मुकाबले के वक्त बुज़दिल किसी को देखा है। एक शख्स ये सुनकर कहने लगा, तू झूठा है, तू यकीनन मुनाफिक है, मैं तेरे बारे में रसूलुल्लाह को मुत्तले करूँगा। चुनाचे अल्लाह के नबी को इत्तला हो गई तो उस मौके पर यह आयत नाज़िल हुई। यानी खुल खुल के बातें करते थे। इब्ने उमर फरमाते हैं कि मैंने इस शख्स को देखा कि वह रसूल अकरम की ऊँटनी के पीछे लटका हुआ था और वो कह रहा था, ए अल्लाह के रसूल, हम तो महज मशगले और खुश तबही कर रहे थे और अल्लाह के रसूल फरमा रहे थे, क्या तुम अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल के साथ हंसी कर रहे थे। इसी तरह एक रिवायत में इसका नाम अब्दुल्ला बिन उबई भी बयान किया गया। और काब बिन मालिक कहते हैं कि एक शख्स ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम में से हर एक को 100-100 कोड़े लगाने का फैसला किया जाए ताकि हमें इस बात से निजात मिल जाए कि हमारे बारे में कोई कुरानी हुक्म नाजिल हुआ हो। चुनाचे अल्लाह के नबी को इत्तला मिली तो मुनाफिकीन ने फिर आकर उजर पेश किया। यानी पूरे पूरे दलाइल मौजूद हैं। और कुछ मुनाफिकीन ने कहा कि ये शख्स यानी नबी सल्लम शाम के किले और महल्लात पता करने जा रहा है, देखो ज़रा क्या सोचते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं ऐसी बातों को पीछे कर दो। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी ज़ुबान जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह निकलता है, इस ज़ुबान से कोई ऐसा कलेमा ना निकल जाए कि जो हमारे ईमान को कुफर में बदल दे।
يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ